दवला पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 3।
ओम नमः सिद्धे
ിന്ദിയ മണുവ മമ പത്ത സോക്കമണവച്ചം കേവല പഹോഹണിജ്യ ദുണ്ണയതിമിരം ജിണം നമ.
ആചാര്യ ശ്രീ വീർസേൻ സ്വാമി രചിത് യഹ ധൗല നാമക ടീക്കാ ഹൈ ജോ ഷട്ഖണ്ഡാഗം ഗ്രന്ഥ പർ ലിഖി ഹുയി ഹൈ ഓർ യഹ ഷട്ഖണ്ഡാഗം കി രചന ഭൂതബലി ഓർ പുഷ്പദന്ത ആചാര്യോ നേ കി ഹുയി ഹൈ. ये षट खंडागम यानी ये 6 खंड है जो अपने लिखित रूप से सर्वप्रथम ग्रंथ रचना हुई है वो षट खंडागम है. धरसेन आचार्य ने, वो आपको स्टोरी मालूम है कि मुनि संघ को वो पत्र लिखा था कि हमें कुछ योग्य शिष्य चाहिए, कि ये लोप होने वाला है अभी. उनको तो अनेक अंगों का कुछ ज्ञान था उनमें से थोड़ा थोड़ा, तो वो लिखित रूप से रखना चाहते थे, वो सिखाना चाहते थे. तो पुष्पदंत और भूतबली दो उनके पास पहुंचे, उन्होंने उनको सारा सिखाया और उन्होंने ये लिखित रूप से सूत्र रूप से रचना की है. ये सूत्र रूप तो लिख दिए है, अभी इसकी टीका, इसका एक्सप्लेनेशन वीरसेन स्वामी ने किया. लगभग आज से 1200 साल पहले की बात है ये बात, तो उसको हम यहाँ देख रहे. तो 6 खंड में सबसे पहला खंड है जीव स्थान. जीव की बात है इसमें, यानी इसको करना नहीं हो कहकर हम टालते हैं, परंतु वो तो जीव की ही प्ररूपणा है, इसमें जीव की ही बातें हैं. तो उसमें जीव स्थान में भी पहले में पहले सत प्ररूपणा. सत प्ररूपणा का अर्थ होता है वो है, बस इतना बताएंगे. तो पहली पुस्तक में यही पूरा विषय हुआ, क्या क्या बता रहे वहां से ये सत प्ररूपणा चल रही. दूसरे पुस्तक में भी वही है. तो पहले में पहले 14 गुण स्थान बताए, फिर 14 जीव समास बताए, उसमें अनेक वो मार्गणाओं का सारा 14 मार्गणाओं का विस्तार से वहाँ वर्णन किया है. अब इस पुस्तक में क्या है कि जीव की जो 20 प्ररूपणा है, प्ररूपणे ने विशेष व्याख्या, वो इसमें कर रहे हैं. विशेष व्याख्या ने अभी हम गुणस्थान जो 14, अपने गुणस्थान नाम तो सुना होगा ना, 14 गुणस्थान होते हैं, फिर उस गुणस्थान का क्या स्वरूप, उसको यह गुणस्थान प्ररूपणा. जीव समास किसको कहना आप बताएंगे कौन कौन से? देखो ये संसारी जीवों के या सिद्धों को भी इंक्लूड करेंगे हम, तो ये जीवों के भेद बताएंगे विशिष्ट अपेक्षा से, कोई क्राइटेरिया लगाएंगे और उसमें से हम उस जीवों के ग्रुप बनाएंगे और फिर उनका विशेष जो कुछ उनका जो क्राइटेरिया है उसको भी बताएंगे. तो जीव समास जो है तो उसमें किस अपेक्षा से भेद किए हैं, कितने इंद्रिय वाला जीव है, तो एक हाँ, और शरीर की भी बात है, एक इंद्रिय में सूक्ष्म एक इंद्रिय और बादर एक इंद्रिय, दो भेद हुए, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय. पंचेंद्रिय में दो भेद, असंगी पंचेंद्रिय मन रहित पंचेंद्रिय जीव वो तिर्यंचों में होते हैं, और मन सहित पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भी है. मनुष्य देव और नारकी तो संगी पंचेंद्रिय ही है. तो ये हमने 7 भेद देखे, इनमें पर्याप्त भी लेना और अपर्याप्त भी लेना. तो पर्याप्त है जो पूर्ण 6 पर्याप्ति होती है, कहीं से जीव मरकर आता है तो उसकी 6 पर्याप्ति होती है, उसकी वो डेवलपमेंट होती है. कोई प्रश्न है आपका? हाँ, पेज नंबर है 427. अभी हम शुरू करने के पहले इंट्रोडक्टरी बोल रहे हैं. आपके यहाँ से हमारे यहाँ मेहमान आए अमेरिका से, इसलिए उनके लिए बता रहे हैं. तो ये पर्याप्ति जिनके पूर्ण होती है वो पर्याप्त जीव है, जिनकी शुरू तो होती है पर पूर्ण नहीं होती उनको अपर्याप्त जीव कहते हैं। ये सातों में ही पर्याप्त भी होते हैं अपर्याप्त होते हैं। तो इस तरह से एक एक प्ररूपणा लेकर उसकी बात यहाँ की। प्राण की अपेक्षा जीवों के कितने प्राण है, प्राण नहीं है द्रव्य प्राण, जैसे इंद्रिय प्राण, इंद्रियों के द्वारा जो जानने का कार्य होता है उसको इंद्रिय प्राण कहते हैं। वैसे जीव का प्राण क्या है, तो जानना देखना है उसका प्राण है, उसको भाव प्राण कहेंगे, वो तो सिद्धों में भी होता है। यहाँ द्रव्य प्राण की अपेक्षा है, हम कहें ये तो जीव के प्राण निकल गए वो नहीं रहा, ऐसे हम जो कहते हैं तो ये द्रव्य प्राण का संयोग रहता है, यानी इंद्रियों के द्वारा जानने रूप कार्य उसको इंद्रिय प्राण कहेंगे। संगी पंचेंद्रिय के पांच होते हैं। बल प्राण में मन बल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण, फिर श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राण होते हैं। तो कौन से जीवों के कौन से प्राण है, संगी के कौन से, असंगी के कितने, द्विंद्रिय के कितने, केंद्रीय के कितने, उसकी संख्या होती है निश्चित। भाव प्राण तो एक ही चैतन्य भाव प्राण, तो सारे जीव उसमें आ गए इंक्लूड, तो उसमें भेद नहीं करेंगे, ज्ञान दर्शन मिलकर चैतन्य एक कहेंगे। और हम तो चैतन्य भाव प्राण से युक्त कभी से अनादि से अनंत काल तक, तो कब मरेंगे, नहीं मरेंगे, और रो रहे हैं हम मर जाएंगे करके, है ना। ये भाव, ये द्रव्य प्राणों का संयोग वियोग तो होता रहेगा ना, अन्य अन्य पर्याय में जाता है तो अन्य अन्य प्राण उसके वहां होते हैं। उसके बाद ये तो ऐसे 20 प्ररूपणाएं हैं। आपके सामने जो 27 नंबर का पेज है ना, वहां नीचे एक टेबल बनाया है और उसमें ऊपर के हॉरिजॉन्टल लाइन में एक शॉर्ट में बताया गुण गुणस्थान, जी का अर्थ होते हैं जीव समास, जो अभी हमने एकेंद्र से पंचेंद्र तक के भेद देखे थे। मिला आपको बेन, अनिला बेन को मिला कि नहीं? हाँ, देखो पो एने पर्याप्ति कितनी होती है, तो 6, 5, 4 वगैरह जो होते हैं ना, तो संगी जीवों को कितनी होती है, असंगीवों को कितनी होती है, वो उसकी संख्या है। प्राण की अभी यहाँ अपर्याप्तों की बात है इसलिए वो अलग अलग लिखे यहाँ पर, जैसे 7, 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे जो संख्या लिखी है, तो संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तों को कितने हो गए, असंगी को कितने हो गए, चतुर इंद्रिय के कितने हो गए, वैसे वैसे वो क्रम से बातें बताई। संज्ञा होती है जो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिक्रिया संज्ञा, वो कौन से गुणस्थान तक क्या होती है वो हमने देखा था। तो वो हमको डिराइव करना है कि अभी वो एक एक क्राइटेरिया, एक एक जीव का नाम बताएंगे, तो उसमें कौन कौन से वो हमको पहचानना है। अभी आप पहली बार सुन रहे हैं, आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें। एक बार वो पता चले ना, तो जैसे हम वो तो पजल सॉल्व करते हैं क्रॉसवर्ड वगैरह, उससे भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है और ये तो सही जानकारी है। हाँ, आपने करना नियोग तो सीखा है उनसे, है ना। ये नाम तो आपने कभी नहीं सुने हैं, भले आपको याद नहीं है परंतु आपने सुने हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल समझेंगे। तो ये संगे, फिर गतियाँ 4 होती है, तो उसमें से कौन कौन से गति में वो पर्टिकुलर जीव रहेंगे वो बताएंगे। इंद्रिय का ई का अर्थ होते इंद्रिया, यानी एक इंद्रिय जाति वाले, एक द्विंद्रिय जाति वाले, वो यहाँ लिखना है। उसके 5 भेद होते टोटल। काय मार्गणा की अपेक्षा, काय ने काय, यानी तो पृथ्वी का, अग्नि का, जल का, ये 5 स्थावर का है और एक त्रस का है, 6 भेद है। उसमें से यहाँ कौन सा लेना है वो यहाँ लिखेंगे। योग में मन के 4 योग है, वचन के 4 है और काय योग 7 प्रकार के, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कारमान। तो जो अभी हम इसके आगे जब पढ़ेंगे ना, तो पहले में पहले कौन से जीव पर लगाना है वो हम वहाँ वो हमको बताएंगे। फिर हमको सोचना है कि यहाँ कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सा योग होगा, कौन सा क्या होगा। कल हमने पर्याप्त जीवों पर लगाए, फिर अपर्याप्तों पे लगाए, है ना। हाँ, अब हमें देखेंगे आगे, देखो उसके बाद वेद, कौन से स्त्री वेद, पुरुष वेद या नपुंसक वेद, कौन से हो सकते हैं उन जीवों में, अलग अलग जीवों में कौन सी पॉसिबिलिटी है, वो सब यहाँ बताएंगे। एक जीव को तो एक होगा कोई तो, परंतु अन्य अन्य जीवों में अन्य अन्य होंगे, वो यहाँ लिखना है। फिर ज्ञान, ज्ञान के जो हमने पर्याय की अपेक्षा कितने भेद होते हैं टोटल, मति सुत अवधि मन परे केवल ज्ञान, और 3 मिथ्या ज्ञान है, कुमति यानी जिसको मत्य अज्ञान कहेंगे या कुमति, सुश्रुत और विभंग ज्ञान, कु अवधि को विभंग ज्ञान के आठ में से हमको नक्की करना है यहाँ उस जीव को कौन से होगा। जब हम ये आगे का एक जीव का नाम लेकर पढ़ेंगे ना तो आपको और ख्याल में आएगा। ये तो मैं इंट्रोडक्टरी आपको बता रही हूँ। संय लिखा है उसका अर्थ है संयम। हाँ तो संयम के सात भेद होते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्या, फिर असंयम और संयमासंयम। ऐसे टोटल भेद है। तो कौन से जीवों के कौन से पाए जाते हैं वो हमको वहां मेंशन करना है। द का अर्थ है दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो हमको जब मालूम है कौन सा गुणस्थान है या कौन सा जीव है पंचेंद्रिय का एकेंद्रिय, तो उसके साथ हम डिराइव कर सकते हैं इसको। एक एक बात हम बिल्कुल देखेंगे और उसकी चर्चा भी करेंगे। लेशा में द लिखता है उसका अर्थ है द्रव्य लेशा, शरीर का वर्ण, और बाकी भाव लेशा होती है। फिर भव्य के कॉलम में भव्य है जीव के अभव्य है उसकी चर्चा लिखेंगे, वहां पर उसकी बात करेंगे। स का अर्थ है सम्यक्त्व, यानी सम्यक्त्व की अपेक्षा कोई मिथ्या दृष्टि होगी, कोई साधन वाले, कोई मिश्र वाले, और यदि सम्यक दृष्टि है तो उसमें कोई क्षायिक समय दृष्टि, कोई औक्षमिक समय दृष्टि, कोई वेदक समय दृष्टि, इतने छह भेद है। उसमें से वहां कौन से पाए जाएंगे, जैसे हमको पूछेंगे मिथ्या दृष्टि है तो कौन सा सम्यक्त्व होगा, यानी सम्यक्त्व की अपेक्षा वो मिथ्या दृष्टि है, उसको सम्यक्त्व तो नहीं है। फिर संगी, ये संगी है कि असंगी है हमको न, जैसे एकेंद्रीय के बारे में लिखना है तो असंगी जी है, ये उतना वहां लिखना है हमको। आ का अर्थ होता है आहारक, आहारक का अर्थ होता है शरीर के परमाणुओं का ग्रहण करना, जो विग्रह गति में एक दो या तीन समय के लिए नहीं भी करता, जो जो मोड़ से जाता है विग्रह गति, विग्रह गति समझते याद है, हाँ मरकर जो अन्य गति, हाँ उसको विग्रह गति कहते हैं। वो जो टर्न कर लेके जाता है तो टर्निंग के पहले पहले अनाहारक, वो कर्म का तो ग्रहण होता है, शरीर के परमाणु का ग्रहण नहीं होता, वो वहां पर पहुंचने पर होता है, इसलिए वो आहारक है कि अनाहारक है हमको लिख सकते हैं हम वहां पर। वो करते थे उपयोग, यानी ज्ञान उपयोग है कि दर्शन उपयोग है कि दोनों है, इस तरह से हम वहां लिख सकते हैं। तो ये तो हमने आपको टेबल बताया कैसे पढ़ना है। अब यहाँ आज का अपना जो विषय है 427 पेज पर, ये टेबल के ऊपर का पैराग्राफ है ना, ये टेबल की जो चीजें है वो हमने कल देखी थी। पहले सामान्य से सभी कुछ हमने घटित किया, फिर पर्याप्त जीवों पर घटित किया और अपर्याप्तों पर, इतनी बात अपनी हुई है। अभी अभी हमने ये पुस्तक शुरू की है। हाँ तो अभी हम मिथ्या दृष्टि जीवों के ओह आलाप कहने पर, यानी मिथ्या दृष्टि हमारा अभी कौन सी जीव लेना है इसमें, मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि जीवों पर ये 20 प्ररूपणा लगानी है। कुछ कठिन नहीं है क्योंकि मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान कौन सा, तो मिथ्या दृष्टि पहला गुणस्थान, इस तरह से हमको सोचना है। देखो अभी हम यहाँ पढ़ते पढ़ते फिर आपको टेबल भी समझाएंगे और उसकी क्यों ऐसा लिखा है वो भी कहेंगे। तो मिथ्या दृष्टि जीवों में क्या क्या, एक मिथ्यात्व गुणस्थान की है, 14 जीव समास, 14 जीव समास याद है ना, एक इंद्रिय सूक्ष्म वगैरह, यानी ये 14 जो भेद देखे हमने, 14 में ही मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं सर्वत्र है, तो 14 के 14 आते हैं उसके अंदर, समझ में आती है बात। नहीं नहीं, गुणस्थान की दृष्टि से पहला गुणस्थान, अब सेकंड कॉलम जो जी लिखा है ये अपर्याप्तों का है, मिथ्या दृष्टियों का टेबल नेक्स्ट पेज पर है 428 पर, वहाँ जी के नीचे क्या लिखा है, 14 है ना, आपको जो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है और वो भी देखना है। देखो नंबर 3 का जो टेबल है 428 पेज पर, नंबर 3 का टेबल है मिथ्या दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप, सामान्य क्योंकि उसमें पर्याप्त भी इंक्लूड किया, अपर्याप्त को भी इंक्लूड किया, मरकर अन्यत्र जाने वालों को भी लिया, पर्याप्त पर्याप्त दोनों को इंक्लूड किया, इसलिए यहाँ क्या कहेंगे, 14 के 14 जीव समास है, एक इंद्रिय के सूक्ष्म बाद इंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्द्रिय असंगी संगी पंचेन्द्रिय सबके पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए, सभी मिथ्या दृष्टियों को इंक्लूड किया, तो 14 जीव समास है। अब पर्याप्ति कितनी होती है, तो हमने ये जो देखा ना आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति आदि संगी पंचेंद्रियों की 6 पर्याप्ति होती है। असंगी जीवों को वो मन पर्याप्ति नहीं है, भाषा पर्याप्ति है, तो असंगी, चतुरिंद्रिय, तीन्द्रिय, द्विंद्रिय इन सबको 5 पर्याप्ति होती है। पर्याप्त जीवों के पर्याप्ति कहेंगे, अपर्याप्तों के अपर्याप्ति कहेंगे। तो यहाँ लिखते समय 6-6, 5-5 और एक इंद्रिय के 4-4, उसको भाषा पर्याप्ति भी नहीं होती, उनके वचन नहीं है, तो पर्याप्ति यानी वो शक्ति उत्पन्न होती है, वो कारण है, पर्याप्ति कारण है, और उसका कार्य जो है बोलने का कार्य है, जो मन का कार्य है, शरीर का जो है, वो सब उसमें पर्याप्ति के कार्य रूप होते रहते हैं पूरे लाइफ टाइम। और पर्याप्ति यहाँ से जा गया, वहाँ उत्पन्न हुआ, तो वहाँ एक अंतर्मुख में पर्याप्ति पूर्ण होती है। तो यहाँ सभी पर्याप्ति लिए, क्योंकि हमें 14 की 14 जीव समास है, इसलिए 6 प 6 अप यानी 6 पर्याप्ति 6 अपर्याप्तियाँ, 5 पर्याप्ति 5 अपर्याप्ति, ये किस जीव के बारे में हम सोच सकते हैं हा? और 4 पर्याप्ति 4 अपर्याप्ति यानी वो एक इंद्रिय के बारे में। तो देखो हमने यहाँ क्या देखा, 14 जीव समास, अभी वो 427 पर पढ़ना है, सेकंड लाइन, संगी के 6 पर्याप्तियाँ 6 अपर्याप्तियाँ यानी संगी पर्याप्तों के 6 पर्याप्तियाँ होती हैं और संगी अपर्याप्तियों के 6 अपर्याप्तियाँ होती हैं। असंगी और विकलेन्द्रियों के, विकलत्रय का अर्थ होता है द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, विकलत्रय, एक इंद्रिय को एक इंद्रिय वाला कहते हैं। आओ बेन जय चार सौ सत्ताईस आप उनके साथ भी लिख सकते हैं, उसके साथ देखो यहाँ बात ये चल रही है, ये धवला नामक पुस्तक है और इसमें जीवों की 20 प्ररूपणा हम बता रहे हैं, जो जीव कांड का भी विषय है। आपने करणानियोग परिचय पुस्तक पढ़ी, उसमें यही सारा विषय है। और ये हमको अभी जैसे हम वो क्रॉसवर्ड है ना, पजल्स होते हैं, वैसे हमको फिट करना है। अभी हमने 20 नाम देखे ना, गुणस्थान है, जीव समास है, पर्याप्ति, प्राण, तो कौन से जीवों के कौन से है वो हमको वहाँ देखना है। और ऐसा क्यों लिखा उसको हम पहले नक्की करेंगे, जिनका अभ्यास है उसको हम डायरेक्ट पहले पूछेंगे कितना है आप बताओ, और आपको ये बताइए ऐसे इतना क्यों कहे, उसका क्या रीजनिंग है, इस तरह हमें आगे बढ़ना है। तभी यहाँ अपना आलाप यानी यहाँ हम कथन किस जीव के बारे में कह रहे हैं, तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि, यानी अभी हम केवल मिथ्या दृष्टियों की बात यहाँ देखेंगे और उनमें ये 20 प्ररूपणाएं लगानी है। तो मिथ्या दृष्टियों का गुणस्थान कौन सा देखना देखा हमने, अभी आपको बताना है पहला। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव कौन कौन से जीव समासों में होते हैं, एक इंद्रिय में होते हैं कि द्विंद्रिय में कि तीन्द्रिय में कि सभी में, तो जीव समास हमने कौन से कितने देखे थे, 14, एक इंद्रिय के सूक्ष्म बाधक, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, सबके पर्याप्त, सबके अपर्याप्त, 7 और 7 14 हुए, तो 14 जीव समास होते हैं। इनको जानना बरोबर बहुत जरूरी है। हाँ, कुनकुंदाचार्य भी अष्टपौर में कहते हैं, कुनकुंदाचार्य भगवान, कि अरहंत भगवान को आपने नमस्कार किया, कब स्थापना करके नमस्कार करते हैं, तो स्थापना किसको कहना मालूम है, हमने तो बहुत जुलूस के साथ पंच कल्याणक मनाया, स्थापना की, तो कहते उसको स्थापना नहीं कहते, तो किसको स्थापना करना, अरिहंत भगवान का गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, ये सब 20 प्ररूपणा जानो, नक्की करो, तब आपने समझा कि ये अरिहंत भगवान है, फिर ये स्थापना हुई, फिर आप नमस्कार करो, बिल्कुल अंतर बाह्य पूरा।
इसीलिए प्रवचनसार 80 गाथा में कहा है कि जिनेन्द्र भगवान यानी अरिहंत को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से यथार्थतया जानो, क्या फायदा बोले, सब मोह नष्ट हो जाएगा। पंचम काल के मुनिराज बता रहे हैं कि तेरे मोह का क्षय होगा और क्षायिक सम्यक तो केवली और श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है, फिर भी इतने जिसको कहते कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट होगा, यानी ये जो अभी अष्टपौर की बात कर रही ना, वही बात बता रहे हैं कि हमने स्थापना की, क्या की, 10-5 करोड़ रुपया दिया और हमने क्या बोलते हैं
पंच कल्याणक
नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो भेट करता और स्थापन करता बन गए तो उससे कोई स्थापना नहीं होती है, स्थापना इसको कहते हैं।
यदि ये सारी 20 प्ररूपणाएं जानना योग्य है, हमको जानना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पूरा मोक्ष मार्ग क्लियर हो जाता है, ज्ञान एकदम निर्मल हो जाए। इसको कहते हैं निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता, उसका अर्थ क्या है, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए अपने मोक्ष मार्ग के बारे में प्रत्येक के, यानी स्थूल इतना तो ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि हम समय सार प्रवचन सार आदि पढ़ते हैं, उसके साथ साथ इसका अगर ज्ञान होगा तो बिल्कुल दृढ़ता होगी, उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि समय दृष्टि को तो निशंक होता है ना, वो निशंक अंग होता है, उसके निशंकित अंग होता है, तो इसके बारे में कंफ्यूजन रहेगा तो कैसा निशंकित अंग होगा, यानी समय ज्ञान बिना का समय दर्शन हो जाएगा, ऐसा होगा ना, नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, तभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो 427 पर फिर पढ़ेंगे, ये नया पैराग्राफ है ना, मिथ्या दृष्टि जीवों के ओघ आलाप कहने पर, ओग दूसरा एक कौन सा शब्द है आपको याद है, ओग और आदेश, ओ यानी गुणस्थान यानी सामान्य से सभी इनके, आदेश यानी उसमें डिटेल विशेषताएं, उसमें ग्रुप भेद करके बताएंगे उसको आदेश कहेंगे। तो एक मिथ्यात्व गुणस्थान है, 14 जीव समास यहाँ तक हमने देखी ना, अब पर्याप्तियां किसकी कितनी होती है, तो संगी जीवों के 6-6 होती है, 6 पर्याप्तियां होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति वगैरह सब। हाँ, असंगी जीवों के मन पर्याप्ति नहीं होती, उसके 5 होती है, तो असंगी चतुरिंद्रिय तीन्द्रिय द्विंद्रिय तक 5 होगी, एक इंद्रियों के 4 ही होगी, उसकी भाषा पर्याप्ति नहीं होगी, कौन कौन सी होगी, आहार पर्याप्ति,
शरीर पर्याप्ति,
इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, उसके श्वासोच्छ्वास भी है एक इंद्रियों के, ये 4 पर्याप्ति होगी, अपर्याप्त जीवों के वो अपर्याप्ति होती है ऐसा कहेंगे।
देखो जब हम देखते हैं कि एक इंद्रिय को श्वासोश्वास पर्याप्ति है, तो एक इंद्रियों में कौन कौन से जीव आते हैं, जलकायिक, तो जलकायिक जल भी मतलब जलकायिक जीव भी श्वासोश्वास करता है, ख्याल में, जो जो पृथ्वी का एक जीव रहते हैं वे भी, पृथ्वी का एक जीव भी श्वासोश्वास करते हैं, ये हमारा आगम प्रूव करता है। और हम देखते हैं मंगल पर जीव की उपस्थिति है कि नहीं, कितनी मूर्खता है, ख्याल में, ये आगम पढ़ने से हमारे ज्ञान में निर्मलता आती, बोल रही नहीं,
मंगल है वो भी पृथ्वी का ही होगा,
पृथ्वी का ही है ना,
हवा भी है उधर,
ये हमने देखा ना कितने ग्रह, कितने
तो मनुष्य होगा तो प्राणी है, मनुष्य नहीं होगा तो प्राणी नहीं है, देखो कैसी बातें हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो आवश्यक है वो ज्ञान का कोई पता ही नहीं है, यहाँ यही तो बात चल रही है। हम यहाँ आगम में देखते एक इंद्र भी श्वासोश्वास करता है, तो फिर अपने कितना मन शांत हो जाता है, यहाँ तो अपने को इसके द्वारा अपनी जो लौकिक में मान्यताएं चल रही है उसको हम टटोल के देखना चाहिए।
अभी प्राणों की बात चलेगी, मुझे कौन से जीवों के कितने प्राण होते हैं, प्राणों के हमने 4 ग्रुप के ग्रुप, एक है इंद्रिय प्राण, अभी वो संगी जीवों के 5 इंद्रिया होगी, चतुरिंद्रिय के 4 होगी, इस तरह से 3 बल प्राण होते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल प्राण, एक होता है श्वासोच्छ्वास प्राण, एक होता है आयु प्राण। तो अभी हमने 14 जीव समास लिए हैं, तो सभी जीवों को इंक्लूड करना है, पर्याप्तों को भी अपर्याप्तों को भी, तो पर्याप्तों के संगी को 10 होते हैं, अपर्याप्तों के, अपर्याप्त में क्या क्या नहीं होगा, मन बल नहीं होगा, वचन बल नहीं होगा, श्वासोश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी पर्याप्ति नहीं हुई तो उसका कार्य कैसे होगा, इसलिए 10 तो पर्याप्त के 7 अपर्याप्त। असंगी पंचेंद्रियों के क्या कम है, मन नहीं है, तो मन बल प्राण पहले से ही नहीं है, पर्याप्तों में ही नहीं है, तो पर्याप्तों के तो 9 ही हो गए, अपर्याप्तों में 9 में से 2 कम करना, कौन से, वचन बल और श्वासोश्वास। अभी चतुर इंद्रिय के पर्याप्त जीवों के कितने हो गए, देखो 4 इंद्रिय प्राण, वचन बल
और
काय बल,
आयु
और श्वासोश्वास, कितने, 8 हुए, अपर्याप्तों में 2 कम कर दो, वचन बल नहीं है, श्वासोश्वास नहीं है, तो 8 और 6, अब 3 इंद्रिय में 1 इंद्रिय और कम कर देना, सात और पांच हो गए, द्विंद्रिय में और एक इंद्रिय कम कर देना तो छह और चार हो जाएगी। यहाँ तक रुकना, अभी एक इंद्रियों के, अभी एक इंद्रियों के तो वचन बल वाला भी नहीं होगा। और एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय प्राण है, काय बल प्राण है, श्वासोश्वास प्राण है, आयु प्राण है, ये पर्याप्तों के चार हो गए। अपर्याप्तों में श्वासोश्वास नहीं होता, लब्धि अपर्याप्त जीव है या अपर्याप्त अवस्था में श्वासोश्वास नहीं है उनके, इतनी आयु उतने में मर जाते हैं, तो उनके तो तीन होगा। अरिहंत भगवान के हाँ दोनों पर्याप्तों के और अपर्याप्त, जो जो हमने अभी गिना है ना, दस और सात, नौ और सात, वो पर्याप्त और अपर्याप्त की बात है। अब अरिहंत भगवान को कितने होते हैं मालूम है आपको? उनको इंद्रिय प्राण होंगे कि नहीं? संगी पंचेंद्रिय हैं, होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? क्यों नहीं है? वो इंद्रिय के द्वारा जानने का कार्य नहीं करते तो उनको इंद्रिय प्राण नहीं कहेंगे। तीन बल प्राण है तो उनमें से मन के द्वारा जानने का कार्य नहीं करते। द्रव्य मन शरीर है तो शरीर की रचना उनके दिखाई नहीं रहा, आंख है नाक है, हम मंदिर में देखते हैं वैसे ओरिजिनल जो है विराजमान मुनिराज उनके सब आंखें नाक कान सब है वहां पर, वो मनुष्य देहधारी है ना, पर उनके द्वारा जानने का कार्य कर रहे क्या? केवल ज्ञान होने पर नहीं, केवल ज्ञान से पूरा जान लेते हैं, उनके आंखों से जाने के नाक से सुनकर जाने ऐसी बात नहीं, वो तो छद्मस्थों का कार्य है, अतीन्द्रिय वाले है ना, वो तो आत्मा से सबको प्रत्यक्ष ज्ञानी है, शायिक ज्ञानी है, शक्ति वो शक्ति नहीं, वो पूरे आत्मा से शक्ति हो गया अभी, वो तो सूक्ष्म रूप शक्ति भी नहीं कहेंगे, पूरा जो जान रहा है उसको इतना सा जानने की शक्ति कैसे कहेंगे हम? जैसे
आपका ऐसा कहना है हमारी आंख है जो नॉर्मल आंख जिसको कहते हैं वो देखने की शक्ति है, और चश्मा लगाया तो शक्ति बढ़ती है कि कम हुई?
हम आप ऐसा ऐसा करो, जैसे मान लेते हमको कैटरेक्ट हुआ है तो क्या धुंधला धुंधला दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? धुंधला धुंधला। अभी हमने ऑपरेशन कर लिया, अब कैसा धुंधला दिख रहा है? क्लियर हुआ तो वो क्लियर भी देखता है धुंधला भी देखता है, ऐसा है क्या? हाँ हाँ नहीं नहीं अभी दूर हो गया, अभी वो धुंधला देखना वो रहा नहीं, जिसको क्षायिक ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष आत्मा के ज्ञान द्वारा जान रहे उसको अभी इंद्रियों के सहारा लेने की क्या आवश्यकता है? वो धुंधला वाला है, वो कमजोर ज्ञान है, तो कमजोर भी शक्ति है और वो पूरी भी शक्ति, ऐसा मानना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, है ना, जिसको केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान में ये भी ज्ञान है ऐसा नहीं, ये क्षाक्षमिक अलग है, वो क्षायिक अलग है। आत्मा के द्वारा परिपूर्ण जानने की शक्ति पर्याय में प्रकट हो गई, अब वो कुमति श्रुत अवधि मन परे कुछ नहीं रहा वहां पर, वो तो कमजोर ज्ञान है छद्मस्थों के। ज्ञान की ही पर्याय है परंतु वो कैसी है? कमजोर है, वो क्षायोक्षमिक है। ये जैसे हम अभी हमारे आंखें कमजोर हो गई तो हमने चश्मा लगाया, मान लेते जो कोई अंदर की कमजोरी दूर हो गई तो चश्मा लगाना पड़ेगा क्या? अभी नहीं लगाना पड़ेगा, पहले तो कुछ लगाना पड़ता था, अभी हमने अंदर की लेंस ही बदल दी, यानी हम ठीक है, ये दृष्टांत है, तो फिर चश्मे की क्या जरूरत है अभी? ख्याल में ना, लौकिक में भी देखे ना आपने, वो अंदर लेंस लगा ली तो ये बाहर की और कुछ लगाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, क्योंकि जो आंखें है नाक है कान है वो तो क्योंकि मुनिराज है, मनुष्य देहधारी थे अभी मुनिराज, हम उनको देखते थे, अभी उनको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? बाहर तो वैसे ही दिख रहे और केवल ज्ञान प्रकट हुआ है उनको, अभी आंख वगैरह उसका क्या है? बने हैं, शरीर है, उसका कार्य अभी कुछ नहीं रहा। ऐसे द्रव्य मन भी वहां पर बना है, उसका कार्य कुछ नहीं है, क्योंकि मन के द्वारा जो जानना है, मन की सहायता से कहो निमित्त से, वो तो कमजोरी का चिन्ह है।
पहले हमें ये नक्की करना है कि जीव अपने ज्ञान गुण से जान रहा है।
हाँ, जानते
इंद्रियों से, इंद्रिया तो शरीर के अचेतन है, अचेतन से चेतन जाने इतना तो परावलंबी जीव नहीं है। हमारी यही मान्यता होती है कि हम पांच इंद्रियों के द्वारा जानते हैं तो इंद्रियां ठीक ठाक होनी चाहिए, तो हम फिर क्या करते, बादाम खाते हैं बुद्धि ठीक हो जाए। अरे उसका उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए पहले में पहले हमारी नक्की मान्यता ये होनी चाहिए कि मैं जो जानता हूँ वो ज्ञान से जानता हूँ, लेकिन अभी मेरा ज्ञान कमज़ोर है इसलिए इंद्रियों का माध्यम मुझे चाहिए। बस इंद्रिया कुछ नहीं जानती, इंद्रिया जानती हो तो मुर्दा घर में पड़ा है उसको भी जानना चाहिए, उसको उठा के फायर पे रखा तो भाग जाना चाहिए, उसको जानता ही नहीं है वो इतनी इंद्रिया होते हुए। यानी हमारा पहले में पहले ये नक्की होना चाहिए कि जानना जो है वह मेरा स्वभाव है, और अभी वो स्वभाव प्रकट नहीं है, कमज़ोर है, इसलिए हमें इंद्रियों का माध्यम लगता है, इसलिए हम मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ख्याल में?
और यहाँ
मूल में हाँ। पकड़ लिया ना तो बाकी आगे बात ऐसी सॉल्व हो जाती है फटाफट।
यहाँ तो पर्यावरण की बात चल रही, ज्ञान कर रहे हैं हम अभी जीव कौन सी स्टेज में कैसे, क्योंकि इन सभी पर्याय में हम घूम घूम कर आए, ये देखने का क्या है कि ये 14 जीव समास है, एक भी पर्याय ऐसी नहीं कि हमने अनंत बार प्राप्त नहीं की है, अब इसमें से छूटने का मार्ग देखना है। तो कहाँ क्या क्या होता है उसका ज्ञान हो जाता है तो पता चलता है ना कौन से जीव किस तरह से रह रहे हैं, उनकी क्या क्या अवस्थाएं हैं, और इसका ज्ञान करके हमको अरे हम हिन दिन वो नहीं करना है, हमारा स्वभाव परिपूर्ण है, ये इन पर्याय में होते हुए भी स्वभाव की अपेक्षा सभी समान है, स्वभाव की अपेक्षा समान होने पर भी ये जो डिफरेंसेस है उसके द्वारा हम जीव कहाँ है क्या क्या कौन कौन से पर्याय में भटक रहे हैं ये हमारी पास हिस्ट्री है, हम इसमें सारे घूमकर यहाँ आए हैं उसकी बात देखनी, और इसमें से अभी हमको छोड़कर सिद्ध बनना है तो ये हमने प्राण देखे सबके कितने किसके होते हैं वो, उसके आगे देखो यहाँ लिखा है ना, इसको पढ़ लेते हैं, तीसरी लाइन, संगी के 10 प्राण 7 प्राण, 10 और 7 दोनों दिए गए, इन्हें पर्याप्त के और अपर्याप्त के, यहाँ तो इतना लिख कर लिख रहे हैं, अभी ऐसे ही टेबल खाली बताएंगे, यहाँ 10 7 ऐसे ऐसे लिखे, 9 7 8 6 ऐसे, उसका अर्थ हमको समझना है। असंगी के 9 प्राण 7 प्राण, चतुरिंद्रिय के 8 प्राण 6 प्राण, 3 इंद्रिय के 7 प्राण 5 प्राण, 2 इंद्रिय के 6 प्राण 4 प्राण, 1 इंद्रिय के 4 प्राण 3 प्राण, चारों संज्ञाएं। यहाँ तो केवली के अभी हमारा तो मिथ्या दृष्टि का आलाप चल रहा है, पहले हमने सामान्य से सभी जीवों को देखा था, वहां तो सभी के प्राण बताए, केवली भगवान के भी अलग से गिनाए थे, 4 प्राण होते हैं, और फिर बाद में उनके तो समुझात अवस्था में 2 हो जाते हैं, अयोग केवली का 1 होता है। अभी हमारा क्राइटेरिया कौन सा है, मिथ्या दृष्टि जी, एक पहला ही गुणस्थान की बात करेंगे, बाकी की बात यहाँ नहीं करेंगे, वो हम देख चुके पहले। अब यहाँ हमको देखना है संज्ञा, संज्ञा के नाम कौन से,
आहार संज्ञा,
भय संज्ञा, तो मिथ्या दृष्टि के कौन कौन सी, चारों, क्योंकि कौन सी संज्ञा कौन से गुणस्थान तक होती है अश्विन भाई, हाँ आप बताएं, 6 छठे तक, क्योंकि वो तो उदीर्णा होती है ना आशाता की, वो उसकी निमित्त है, और भय संज्ञा 8वें तक, 8वें के अंतिम भाग तक, फिर मैथुन संज्ञा 9वें के पहले भाग, जहाँ उन कर्मों का उदय है तब तक उसको कहने में आता है, वैसे कोई वहाँ कार्य नहीं, वैसे कोई परिणाम नहीं, कुछ नहीं है। और परिग्रह संज्ञा 10वें के अंत तक, क्योंकि सूक्ष्म लोभ का उदय है, तो परिग्रह में मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ सब आ गए ना, तो वहाँ अकेला सूक्ष्म लोभ का उदय है तो उसको परिग्रह संज्ञा कहेंगे। तो ये मिथ्या दृष्टि के चारों है। अभी कौन से गतियों में मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं, चारों गति, तो गतियां चारों लिखी। और कौन से जातियां, अब जातीय की अपेक्षा 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, जीव समास में हमने वो तो पर्याप्त है क्या अपर्याप्त है सूक्ष्म है क्या बाधर है उसकी चर्चा की, यहाँ तो केवल वो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक 5 प्रकार है, तो 5ों जाति उसमें आ जाती है। अभी कायिक में क्या लेना, पृथ्वी कायिक जल कायिक और सभी 5ों स्थावर काय और 1 त्रस्त काय, यानी 6 काय वाले इतने हैं। अभी योग में कैसे देना है, देखो मनोयोग 4 है, मिथ्या दृष्टि को हो सकते हैं ना, क्योंकि मिथ्या हमने संगी को भी लिया है ना, वचन योग चार होते हैं वो भी हो सकते हैं। अब औदारिक औदारिक मिश्र होगा कि नहीं, काय योग में से मिथ्या दृष्टियों के होगा, वैकरिक वैकरिक मिश्र जो देवों के होता है वो भी होगा, आहारक आहारक मिश्र नहीं होगा। आहारक जब शरीर बनाते हैं ना मुनिराज, तब उनके वो आहारक का योग होता है, छठे गुण स्थान में होता है। आहारक मिश्र ने वो पर्याप्ति चल रही है तब उनके आहारक मिश्र है, और बाद में आहारक का योग हो जाता है, तो छठे गुण स्थान वर्ती भावलिंगी उनके। यानी हम मिथ्या दृष्टि की बात करें तो वो निकाल देना, दो निकाल देना, कारमाण का योग होगा। हाँ हाँ, जिन्होंने वो प्रकृतियां बांधी है आहार वृद्धि वाले जीवों को ये होता है, पर उनका गुणस्थान छठा है, इसलिए हम अभी बात करें मिथ्या दृष्टियों की, तो वो दो योग यहाँ नहीं होंगे, बाकी अन्य होंगे। 15 में से 13 योग यहाँ होंगे। अब वेद को देखना है, तीनों प्रकार के वेद पाए जाएंगे ना यहाँ पर, कोई नपुंसक वेदी, कोई पुरुष वेदी, कोई स्त्री वेदी, कषाय चारों है। अब यहाँ ज्ञान कौन से हो गए हैं? पहला गुणस्थान है कुमति कुश्रुत और विभंग ज्ञान। हर जीव को विभंग ज्ञान नहीं होता है, यहाँ तो अनेक जीवों की अपेक्षा बताना है कि मिथ्या दृष्टियों में विभंग ज्ञान पाया जाएगा। मिथ्या दृष्टियों का जो अवधि ज्ञान होता है उसको विभंग ज्ञान कहते हैं। संयम कौन सा है? असंयम, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान असंयमियों का है, असंयम है। और दर्शन कौन से होते हैं? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन को अवधि ज्ञान के साथ समय दृष्टियों को लगाते हैं, यही पद्धति यहाँ पर। अब लेशा कौन कौन सी होती है? द्रव्य और भाव की अपेक्षा छह लेशा है। द्रव्य का अर्थ होता है शरीर का वर्ण, छह प्रकार के होते हैं। कौन से छह होते हैं? अभी जो नाम हमने भाव लेशा के है वही द्रव्य लेशा के, अभी उसमें कॉम्बिनेशन बहुत हो सकते हैं। कौन से नाम है? कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल, ये भाव लेशाओं के भी नाम है, और शरीर का जो वर्ण है जिसको द्रव्य लेशा कहते हैं उसका भी नाम है। तो मिथ्या दृष्टियों के द्रव्य से कौन सी लेशा होगी? तो छो में से कोई भी हो सकती है, और भाव की अपेक्षा छो होगी। तो जैसे हम ना एक इंद्रियों में तीन प्रकार की अशुभ होती है, कृष्ण नील कापोत में टर्न बाय टर्न उसके अंतर्मुहूर्त में पलटता है। नारकियों की लेशा पूरे लाइफ टाइम तक वही एक ही रहती है, नहीं ऊपर के नरकों में कपोत पहले दूसरे तीसरे तक, फिर बीच में नील लेशा, और छठे सातवे में कृष्ण लेशा, पूरे लाइफ टाइम तक उनकी वही लेशा थी। हाँ उसमें उनके वेरिएशन होता है, यानी उसमें थोड़ी विशुद्धि संकलेश होते रहेंगे क्योंकि उसमें असंख्यात भेद होते एक एक लेशा। अब देवों में हाँ ये भवनत्रिक में और सौधर्म ईशान में पीत, फिर वो सनत कुमार से लेकर सहस्रार तक पद्मलेशा, और ऊपर के सारे शुक्ल लेशा। ये देवों की तो फिक्स लेशा होती है, मनुष्यों में छह लेशा है, भवनवासियों में पीत पद्म और शुक्ल तीन, और अपर्याप्त अवस्था में उनके तो अशुभ होती है। भवनवासियों में अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ होती है, बाद में पीत होती है। देवों में पीत पद्म शुक्ल बताए ना, भवनवासी नहीं, मुझे भोगभूमि की बताना, शायद मैंने भवनत्रिक बताया, भवन भोगभूमि की बात बतानी थी। भोगभूमि में तीन शुभ लेशा होती है, भवनत्रिक में नहीं। नहीं, कोई भी मनुष्य हो मिथ्यात और सासादन में जन्म लेता है तो अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ लेशा होती है। भोग भूमि में भी यही होगा ना, मिथ्या दृष्टि वहाँ जाता है तो उसकी भी अशुभ लेशा होगी। सम्य दृष्टि क्षायिक सम्यक्त्व के साथ मरकर जो भोग भूमि में जाता है उसकी कपोत लेशा होती है, उसकी नील और कृष्ण नहीं होती। और वह तो पर्याप्त होने पर तीन शुभ लेशा होती है वहां पर। क्योंकि वहां से सारे मरकर मिथ्या दृष्टि हो या सम्य दृष्टि देव में चले जाते। अभी तो लेशा बहुत डिटेल में है, हम थोड़ा वो डिटेल हम वहां देखेंगे देवलाली में। तो यहाँ तो छह लेशा ही पाई, क्योंकि हमको इन जनरल बात करनी है, कौन सी कहाँ है क्या नहीं वो कुछ नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव है, 14 जीव समास है और सभी गतियों को इंक्लूड कर दिया है, तो यहाँ छह लेशाएं है बस, इतना ही अभी इतना ही काफी हमारे लिए। अब ये मिथ्या दृष्टि जीव भव्य है क्या अभव्य है? दोनों है, क्योंकि मिथ्या तो में ऐसे ही भव्य जीव आगे समय को प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कभी होगा ना कि सारे भव्य खलास हो गए ना? सब मोक्ष चले जाएंगे, आप इतना स्वाध्याय करते हो, हम कैसे पूछते लोग, तो सभी मोक्ष चले जाएंगे तो संसार में कौन रहेगा? तो एक निगोद शरीर में इतने अनंत जीव है, एक निगोद शरीर में, कि उसके अनंत वे भाग प्रमाण जीव सिद्ध होते हैं। क्या कहा? एक निगोद शरीर, जैसे एक शरीर और अनंत जीव, कितने अनंत? तो जो सिद्ध राशि से भी अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में रहते, यानी एक निगोद शरीर के जित संख्या है ना, उतने भी कभी जीव मोक्ष जाने वाले नहीं, और ऐसे तीन काल में। और ऐसे निगोद के शरीर कितने हैं? असंख्यात लोक को पांच बार लिखो, आपस में गुणा करो, इतने तो पूरे लोक में निगोद के शरीर है, और एक एक शरीर में इतने जीव, ये नेवर एंडिंग है, अनंत है। अनंत का स्वरूप नहीं ख्याल में आता, क्योंकि हाँ क्योंकि हम तो ये तो अभ्यास से ख्याल में आ सकता है, ख्याल में आ सकता है, ये तो आगम से ही आ सकता है। नहीं तो हमको लोग पूछते हो, यानी वो जो साइंस सीखने वाले भी पूछते हैं, अनंत है ना वो, अनंत के भेद कैसे हो सकते हैं? ये उनका कहना है, जो अनंत ही है, नेवर एंडिंग भी जो अनंत है, उसके भेद कैसे करते? तो ये तो केवल ज्ञानी का विषय है, क्योंकि जीव की संख्या भी नेवर एंडिंग अनंत है, जिसको अक्षय अनंत कहते हैं, फिर भी उससे पुद्गल अनंत गुणा है। कितना अनंत गुणा मालूम है ना? आपने सुना होगा, एक द्विरूप वर्ग धारा होती है, जैसे हमारे पहाड़े हम स्कूल में वो 2 1 2 कहते हैं ना, वैसे यहाँ क्या करना है, स्क्वायर 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 करना है। 2 का स्क्वायर है 4, ये हमारी पहली संख्या। सेकंड पोजीशन पर 4 का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग 65,536, जिसको पन्नट्टी कहते हैं, 5 डिजिट है, उसका वर्ग 10 डिजिट बादल कहेंगे, उसका वर्ग 31 जो 20 डिजिट प्रमाण हो जाता है। अभी ये हमने 5-6 बार किया, किसको? 2 को। अभी पहले स्थान पर 4 है, फिर 16 है वगैरह। अब यहाँ क्या रखना है? जीव, जीव का प्रमाण, जीवों का प्रमाण जो अनंत है, उसका 1 बार वर्ग, 2 बार वर्ग, 3 बार वर्ग, 4 बार वर्ग, 5 बार, कितना? अनंतानंत बार, केवल अनंत बार नहीं, अनंतानंत बार वर्ग करो, तब जाके पुद्गल की संख्या आती है। हम तो जीव से अनंत गुना पुद्गल बस इतना कहते हैं। अब पुद्गल को यहाँ रखो, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, अनंतानंत वर्ग करो, तब जाके 3 काल के समय आएंगे। अब काल को इधर रखो, वर्ग 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 अनंतानंत वर्ग, तो आकाश के प्रदेशों की संख्या आएगी। अब आकाश के प्रदेश को इधर रखो, अनंत 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 बार करो, तो प्रत्येक द्रव्य में गुण कितने उसकी संख्या आएगी। हमें तो अपने तो महत्ता नहीं आती। अब ये इतने गुण, अब ये ऐसे अनंत द्रव्य, उसके अनंत गुण, उसके 3 काल के अनंत पर्याय, और केवल ज्ञानी सबको एक समय में जानता है। और समय भी कितना सूक्ष्म, जो सेकंड है उसमें तो हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है, और एक आवली में जघन्य युक्ता संख्या समय होते हैं, अभी वो भी बहुत बड़ा प्रमाण है। और हमने साइंटिस्ट ने हमको साइंस मानेगा तो हम मानेंगे हा? अभी नैनो सेकंड और क्या क्या निकला है, उसके आगे थोड़ा गए, अभी थोड़ा आगे गए हैं, संख्या तक ही गए हैं। ये केवल ज्ञानी के ज्ञान की बात है। और ये इन सभी चीजों को एक समय में युगपत यानी एट ए टाइम जान लेते। ऐसे केवल ज्ञान का स्वरूप जब तक हम निश्चित नहीं करते हैं, अपना स्वभाव निश्चित नहीं करते, तो समय दर्शन होने का चांस नहीं। इसलिए अरिहंत भगवान को जानो कहते, क्योंकि हमको केवल ज्ञान क्या चीज है उसको नक्की करना। और ये जब हम ये आगम पढ़ते हैं, करणान योग पढ़ते हैं, तो केवल ज्ञान की सच्ची महिमा आती है।
यानी वहाँ ज्ञान का त्रिकाल स्वभाव और वो व्यक्त पर्याय दोनों एट ए टाइम दिखने में मिलती है, इसलिए अरिहंत को जानो।
यानी अरिहंतों का जैसा पर्याय है वैसे उनका स्वभाव है, और जैसा उनका स्वभाव वैसा मेरा स्वभाव है। अरिहंत के दर्शन क्यों करने? अपने स्वभाव के दर्शन करने के लिए। आप सुबह सुबह किसका दर्शन करते हैं? दर्पण का। दर्पण दर्पण का क्यों करते हैं? वहां दर्पण को कोई नहीं देखता, वहां अपने प्रतिबिंब को देखता है, पर उसके लिए दर्पण के सामने जाते हैं। ऐसे भगवान के सामने क्यों जाते हैं? अपने स्वभाव का दर्शन करने के लिए। और हम स्वभाव का दर्शन नहीं करते, बस उनकी बाह्य आकृति देखते, नमस्कार करते, इधर का चावल उधर चढ़ाते और फिर हो गए हमारी पूजा। हमें तो भगवान के सच्चे दर्शन यानी अपने स्वभाव के दर्शन हो जाए तो हमने भगवान का दर्शन किया। अभी कोई भी आगम निकालो, यही बात हमको उसमें से निकालनी है। हाँ देखो, अभी हम कहाँ तक आए? भव्य सिद्धि का, भव्य सिद्धि का। अभी सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा, सम्यक्त्व मार्गणा हमारा क्राइटेरिया क्या? सम्यक्त्व। तो सभी जीवों के हमने 6 भेद किए थे, मिथ्या दृष्टि, सासाधन, मिश्र वाले, और सम्य दृष्टियों में औपशमिक, वेदक और क्षायी। इसमें से मिथ्या दृष्टि है ये, इसमें संगी भी जीव है, असंगी भी है, आहारक भी है और अनाहारक। आहारक का अर्थ है शरीर के परमाणु ग्रहण करने वाले, और अनाहारक कब हो गए? विग्रह गति में, जब मोड़ वाली गति होती है, तो मोड़ के पहले पहले शरीर के परमाणु का ग्रहण नहीं हो रहा है, तभी उसको अनाहारक कहेंगे। साकार उपयोगी यानी ज्ञान उपयोगी, और अनाकारणी दर्शन उपयोगी होते हैं। अभी हमने मिथ्या दृष्टियों पर इन जनरल बात लगाई, उसमें पर्याप्तों को भी इंक्लूड किया था, अपर्याप्तों को भी इंक्लूड किया था। अब देखो उन्हीं मिथ्या दृष्टि, अभी एक टेबल देख लो, अभी हमने जो पढ़ा ना वही सब है, उसमें कुछ अलग नहीं। बात हमने एक एक को बराबर अलग अलग देखा था ना, नंबर 3 का टेबल ये अपना पूरा हुआ बराबर। अभी हम आगे पढ़ेंगे, और अभी ये नंबर 4 के टेबल के साथ उसको आपको बीच में मिलाकर देख लेना है तो देख सकते हैं। यानी अभी तक हमने 14 जीव समास इंक्लूड किए थे। हाँ, ये दवला दूसरी भाग, दूसरा पुस्तक है। अब ये मिथ्या दृष्टि पर्याप्त जीवों के ओघालाप। अभी मिथ्या दृष्टि पर्याप्त शब्द लगाया, मिथ्या दृष्टि कहने से गुणस्थान तो पहला ही है। जीव समास में कोई फर्क पड़ेगा? अभी अभी बाकी कोई नहीं बोले, ये हमारे मेहमान बोलेंगे। जीव समास हमने 14 देखे, एक इंद्रिय के सूक्ष्म बहादुर, द्विंद्रिय, तिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, संगी, मूल भेद 7 करके उसमें पर्याप्त 7 लिए थे, अपर्याप्त 7 लिए थे, और मिलकर 14 हुए थे। अभी हमारा आलाप क्या है? आलाप यानी अभी किसके बारे में बताएंगे? पर्याप्तों के। तो अभी जीव समास कितने होंगे? अब ये तो जब पहली क्लास का प्रश्न है, बता दिया उन्होंने, 7 ही है ना। तो जीव समास के नीचे क्या लिखा देखो, वहां पर 7 पर्याप्त, नीचे का टेबल देखो 4 नंबर का। तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे अभी, एक मिथ्यात्व गुणस्थान पर्याप्त संबंधी 7 जीव समास। अभी हमको पर्याप्त या गिननी है, तो सारे पर्याप्त पर्याप्त गिनना है, 6, 5 और 4। पहले पर्याप्त अपर्याप्त एक साथ थे, तभी 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, 5 पर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां, ऐसा कहा था। अभी हमको अपर्याप्तों की बात नहीं करनी है, 6, 5 और 4। अब प्राण को देखना है हमको, तो संगी पंचेंद्रियों में पर्याप्तों के गिनने हैं तो 10 हो गए, असंगी में 9 हो गए, चतुरिंद्रिय में 8, इस तरह से एक एक कम करते चले जाओ, एक इंद्रिय में 4, यही लिखा है देखो, 10, 9, 8, 7, 6, 4। नहीं, एक इंद्रिय अपर्याप्तों को नहीं लेना, अभी केवल पर्याप्तों को लेना। जब हम अपर्याप्तों का भेद करेंगे तो मात्र अपर्याप्तों के प्राण गिनना है, अब यहाँ तो केवल पर्याप्तों को लेना है। अब देखिए, सात जीव समास संगी के छह पर्याप्तियां, असंगी और विकलत्रयों के पांच पर्याप्तियां, एक इंद्रियों की चार पर्याप्तियां। अब प्राण अभी हमने जो देख लिए, संगी के दस प्राण, असंगी के नौ प्राण, चतुर इंद्रिय के आठ प्राण, तीन इंद्रिय के सात प्राण, द्विंद्रिय के छह प्राण, एक इंद्रिय के चार प्राण। अभी संज्ञा भी चारों ही होगी, आहार भय मैथुन परिग्रह, चारों संज्ञाएं पाई जाती हैं। चारों गतियों में होते मिथ्या दृष्टि पर्याप्त, एक इंद्रिय आदि पांचों जातियां होगी, तो इंद्रिय के नीचे पांच लिखा। पृथ्वी काय ने स्थावर काय त्रस काय सब छह हो गए, इसलिए छह लिख दिया। अब योग में देखो, अभी पर्याप्तों के योग है, तो मन के चार वचन के चार ले लेना है ना,
मिश्र वाला लेना।
हाँ, मिश्र वाला नहीं लेना, कोई भी मिश्र नहीं लेना। ये मिश्र योग कब होता है? देखो विग्रह गति में तो कारमान का योग होता है। अब वहां गया है, शरीर के परमाणु ग्रहण चालू कर दिया, जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब औदारिक मिश्र मनुष्य तीर्यंचों को और देवनारकियों को वैक्रिक मिश्र, जो आहारक शरीर बनाते हैं उनके लिए आहारक मिश्र, और कारमान का योग भी अपर्याप्तियों का ही गिनने में आएगा, क्योंकि विग्रह गति में वो पर्याप्ति की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। अब यहाँ हमको पर्याप्त जीव लेना है, मन के चार वचन के चार, औदारिक वैक्रिक। आहारक को नहीं लेना क्योंकि वो तो मुनियों के होता है, कारमान को भी नहीं लेना। तो कितने हो गए? दस हो गए। इस तरह से उसको काउंट करना है। तो अभी बताएंगे, यहाँ पर 429 पेज पर आए हम। आहारक द्विक और अपर्याप्त संबंधी तीन योगों के बिना, आहारक द्विक यानी आहारक आहारक मिश्र योग की बात है, और अपर्याप्त संबंधी तीन यानी वैकरिक मिश्र, औदारिक मिश्र और कारमान, ये योग नहीं होगे क्योंकि ये पर्याप्त जीव, इसलिए दस योग। ये तो दस योग है ना, अलग अलग जीवों के अलग अलग समयों की बात है, एट ए टाइम एक जीव को एक ही योग होता है, परंतु जो पंचेंद्रिय जीव है उनके तीनों योग में पलट, एक अंतर्मूर्त में नियम से पलटता है, और वो अंतर्मूर्त बहुत छोटा होता है। मनोयोग से वचन योग, वचन योग से काय योग, ये पलटना चलता रहता है, वो तो श्रेणी में भी पलटता रहता है, हमने देखा था ना, आठवें नवे वो बारहवें गुणस्थान तक वो भी पलटता रहता है, बारहवें के लास्ट में जाके वो योग फिक्स हो जाएगा उसका, तब तक ये पलटना चलता रहता है उसका। द्विंद्रिय जीव है तो उसका काय योग और वचन योग उसमें पलटना होता है, एक इंद्रिय जीव एकमात्र काय योग में ही है, वो तो उसका तो चलता रहता है, काय योग ही चलता रहता है। वेद तीनों पाए जाते हैं ना, यहाँ पढ़ेंगे अभी तीनों वेद, चारों कषायें, ये कषाय भी पलटते रहते हैं, वेद पलटता नहीं है, किसी जो भव जिस पर्याय में उत्पन्न हुआ है वही वेद उसका मरण तक रहता है, वो बीच में पलटता नहीं है, पर कषाय हर अंतर्मूर्त में पलटती है, योग है वो अंतर्मूर्त में पलटते हैं। भाववेद की बात है, द्रव्य वेद यानी शरीर की बात नहीं, शरीर के चिन्हों की बात नहीं है। लोग पूछते हैं ऑपरेशन से पलटा जाता है, परंतु जो भाव है उसके अनुसार वो शरीर में कुछ बाहर चेंजेस करना चाहते हैं, परंतु भाव वेद तो पलटता ही नहीं है, जो जिसका है वही कायम रहता है। यानी तो ऑपरेशन जो कुछ किया तो उससे वो बदल गया, ऐसा थोड़ा ही, उनके जो कुछ अंगोपांग नाम कर्म वगैरह वो वैसे ही रहेंगे। जैसे हमने अपना हाथ काट लिया तो क्या हम बिना उंगली के हो जाएंगे? हमने तो थे ना उसमें, तो बाद में काट दिया, उसका अर्थ क्या है? उसकी रचना तो हुई थी वैसे, ये हो गया ना तीनों विचार कषाय, तीनों अज्ञान क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो, और पर्याप्त है तो कुमति कुशलता और विभंग ज्ञान। मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त कहते तो विभंग ज्ञान नहीं पाया जाता, अपर्याप्त अवस्था में जब तक पर्याप्ति नहीं होती पूर्ण मन पर्याप्ति वगैरह तब तक विभंग ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ये पर्याप्तों की बात है, इसलिए कुमति कुशलता और विभंग ज्ञान। असंयम क्योंकि पहले गुणस्थान है, चक्षु और अचक्षु ये दो दर्शन, विभंग ज्ञान के साथ अवधि दर्शन को नहीं लेते, ये पद्धति यहाँ की। द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, क्योंकि द्रव्य से शरीर के वर्ण भी छह होते हैं और भाव भी, तो आपने कोई लाल कलर वाला देखा है शरीर, मिथ्या दृष्टि लाल कलर वाला नहीं देखा? अमेरिका में नहीं देखे?
अमेरिका में देखने को जाते लोग
हरे इंडियन देखो कौन कौन से जीव समास लिया आपने इसमें, जीव समास कौन से होंगे? सात जीव समास लिखे ना, हाँ कौन कौन से लिए? एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, तो रेड गुलाब का फूल नहीं देखा आपने हमें जब वर्ण की बात आती तो हमें लगता है कि कौन सा मनुष्य कौन सा रंग वाला होगा, है ना? यहाँ तो सारे, हाँ शरीर का वर्ण, शरीर ने एक इंद्रियों के भी, अभी हम देखते ना पंछी इतने कलर के, वो पोपट इतना ग्रीन कलर का है, रेड कलर के भी हमने देखे थे, वो तो बैंकॉक उसमें सिंगापुर में आते हैं वैसे जू में रखते हैं ना, कितने अलग अलग कलर के। और वनस्पतियों में फूलों में तो सारे कलर दिखते हैं, उन्होंने बोला ना आपका वो फॉल सीजन देखने के लिए वहाँ चले जाते हैं वो द्रव्य लेशा है, और वो एक नियम की द्रव्य लेशा देख देख कर हम खुश होते हैं ये हो गए ना छोलेश है, भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भव्य भी है अभव्य भी है, मिथ्यात्व ये उनका सम्यक्त्व की अपेक्षा, सम्यक्त्व मार्गणा में उनका भेद है मिथ्यात्व वाला, संगी और असंगी दोनों होते हैं। अब देखो पर्याप्त जीव है तो आहारक, आहारक यानी वो पर्याप्त हो चुके हैं, आहारक का अर्थ होते हैं शरीर के परमाणु हर समय ग्रहण कर रहे हैं। नहीं तो आप पूछेंगे हमने 10 उपवास किए तो हम आहारक है कि अनाहारक है? बोलो आहारक है, क्योंकि शरीर के परमाणु का ग्रहण तब भी चल रहा है, ध्यान में वो आहार उसको कहते कबल आहार, वो बात नहीं है, यहाँ आहार है नौ कर्म का ग्रहण, अर्हंत के भी होगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि उनके भी जब तक औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय कब तक है? 13वें के अंत तक है, तो 13वें गुणस्थान में आहारक है, 14वें में अनाहारक है, वहाँ बस शरीर के परमाणुओं का खिरना चलता है, जैसे कर्म खिरते हैं वैसे शरीर के परमाणु भी खिरते रहते हैं, नया ग्रहण नहीं होता। और हमारा नया हर समय ग्रहण होता है और पुराना हर समय जाता है, कितने में? अनंतों में, यानी हम तो ठीक ठाक है ना कल जैसे दिख रहे हैं ऐसा देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है? अनंत नए आते हैं, अनंत पुराने में से चले जाते हैं, अरे वहाँ शाश्वत तो हम ही है खुद चैतन्य स्वभाव वाले, पर हमने तो इसी को अपना स्वरूप मान लिया है ना, फिर भी बर्थडे भी मनाते हैं सादा ने, हैप्पी बर्थडे। और हमारे बच्चे भी देखो कैसे, मिथ्या तो सिखाना नहीं पड़ता है, बर्थडे गया कि अभी आगे के साल जो साल दिन गिनना चालू करते हैं कभी आता है हमारा बर्थडे, हाँ हाँ नहीं नहीं यह मित्र हाँ, जैसे समुद्रघात में भी समुद्रघात केवली भगवान समुद्रघात करते हैं प्रतर लोक पूर्ण और प्रतर, तब भी वो अनाहारक रहते हैं, यानी शरीर के परमाणु को ग्रहण नहीं करते, अयोग केवली भी नहीं करते, और संयोग केवली में तीन समय की बात जो समुद्रघात करते हैं उनकी बात है, बॉडी छोड़कर नहीं जाते, बिना छोड़े जाते, यानी मूल शरीर में तो है ही आत्मा प्रदेश और बाहर फैलते हैं, केवली समुद्र पहले में तो ऐसे खंबे के जैसे ऊपर से नीचे तक वात वाले बिना, इसको दंड कहेंगे, कपाट यानी ऐसे हॉरिजॉन्टल लोकाकाश के एंड तक वात वाले को छोड़कर, तीसरे समय में ऐसे भी फैलते और चौथे समय में वात वाले को इंक्लूड करके फैलते हैं। एक कोई अकेला दंड करेगा ऐसा नहीं, करेगा तो हाँ सबसे, यानी आठ समय उनकी बात पूरी मूल शरीर में लौट के आते हैं, और वहाँ एक एक समय में पूरा स्थिति कांड घात होता है, असंख्यात वर्षों की स्थिति घटती है कर्मों की, यानी गजब का कार्य एक एक समय में होता है। नहीं वो नहीं पूछा, सबका समुद्रघात नहीं होता ये तो बात है ही, परंतु जो समुद्रघात करते क्या केवल कोई दंड करके वापस आता है, कोई कपट करके वापस, ऐसा नहीं है, जैसे उपशम श्रेणी चढ़ता है तो पूरा 10-11वें तक जाके लौटेगा, पर वहाँ तो कोई मरेगा तो चौथे में जाएगा देव में, वैसा यहाँ पर भी नहीं है। समुद्रघात चालू करते तो पूरे लोग पूरण करके वापस उसी क्रम से वापस समेट हो आत्म प्रदेश। और आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़ते ही नहीं, कोई भी समुद्रघात हो, हाँ, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, तो उसके साथ कर्म जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो उतने प्रदेश सिद्ध हो गए, उतने प्रदेशों को मुक्ति मानना पड़ेगा। तो अच्छा, हम थोड़ा थोड़ा समुदाय करेंगे, थोड़ा थोड़ा मुक्त होके वापस। मूल शरीर में आत्मा है और वो कर्म जो उसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, बहुत अनंत अनंत कर्म पड़े तो इसमें भी रहेंगे और वो प्रदेशों के साथ वहां पर भी फैलेंगे, तेजस भी और कारमान भी, वो तो आत्म प्रदेशों के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, वो सब चले जाएंगे वहां पर। उसका कभी उसके यानी उसका तो समय छूटेगा नहीं, जाके वो अंतिम समय तक रहेंगे, कौन से 14वें के अंत तक, कर्म और तेजस वो वहीं पर पड़े हैं। नहीं तो ऐसा मानना पड़ेगा ना, जितने बाहर गए तो चलो अच्छा है मुक्ति मिल गई, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा भी कह रहे ना, वो आठ मध्य प्रदेश में बंधन नहीं है, ऐसा कहने वाले अभी चल रहे कोई विद्वान, तो उसको मुक्त मानना पड़ेगा तो अच्छा है। उतना प्रदेश है, वहां पर भी कर्म है। अब जो देव है, दोनों है, दोनों है। जैसे आत्म प्रदेश और फैल गए, अभी तो कितना है आपके और शरीर क्या होगा ना, उतने ही क्षेत्र में, यानी एक्चुअली क्या है, जितना जीव का आकार है उसी में शरीर के डिपॉजिट हुआ है। अब क्या है, आत्म प्रदेश फैल गए, शरीर तो उतना ही रहा, वो शरीर उसके साथ फैला नहीं है, तो आत्म प्रदेश फैल गए और फिर वापस आ गए, फिर जितने थे उतने रह गए। वो केवल ही समुदाय, बाकी हम आप किसी से समुदाय तानने के होते उसमें कोई कर्मों की स्थिति घटती नहीं है।
कौन सा
वेदना समुद्घात में क्या होता है, आत्म प्रदेश शरीर के बाहर भी चले जाते, कितना मैक्सिमम 3 गुना ऐसा ऐसा और ऐसा, कुछ कारण नहीं है ऐसे सहज होते हैं, शायद समुद्घात क्रोधा विषय अन्य कुछ हो जाता है तो उसके भी प्रदेश थोड़े फैलते। वैक्रिक समुद्घात जो विक्रिया से शरीर बनाते ना, देव है उनका मूल, उनका शरीर भी वैक्रिक है और वो विक्रिया से और अनेक शरीर बनाते, तो उसमें क्या हुआ, आत्मा हर शरीर में, अभी मान लेते हैं तो हजारों की सेना बना दी, हजारों शरीर बना लिए, तो सब में मिलकर आत्मा एक, आत्मा के टुकड़े नहीं होते, वो कंटिन्यूएशन में है। हाँ, प्रदेश फैल जाते हैं,
तो पूरा कनेक्टेड रहता है,
कनेक्टेड रहता है क्योंकि उसका कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा।
तो सब पूरी सेना में
एक आत्मा प्रदेश, एक आत्मा है। नहीं नहीं नहीं, अभी जीव का, अगर जीव की आयु पूरी हो गई तो कोई नहीं रहेगा, आयु पूरी होती है तो, आयु पूरी नहीं होती तो ऐसा कुछ घात भी नहीं होता उसका। हाँ, वो विक्रिया भले बनाई हुई है कुछ है, जैसे हम मुनिराज ने आहारक शरीर बनाया, और आहारक शरीर बनाया उस काल में उसकी मृत्यु हो सकती है, तो वो भी मर गया ना, आत्म प्रदेश में निकल गया, दोनों में से मूल शरीर में से भी गए और वहां से भी गए, उसमें से भी चले गए, देव में चले जाएंगे डायरेक्ट। हाँ हाँ, मरण होता है, होता है कि नहीं, मिश्र में नहीं होता ऐसा एक मत है, अभी कोई तो आचार्य मिश्र में भी मरण स्वीकार करते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो उनको तो तेजस समुदाय अशुभ तेजस हुआ और वो मूल शरीर में प्रवेश करके वो भस्म हो गए, वो बात अलग, वो भी समुद्घात ही कहलाता है, वहां पर भी शरीर को छोड़े बिना। विष्णु कुमार की वैक्रिय रिद्धि थी तो उन्होंने औदारिक शरीर को विक्रिया से अलग, ये बात अलग है। मनुष्य जो वैक्रिय शरीर बनाते हैं वो उनके वैक्रिय शरीर उसका नहीं है, औदारिक शरीर को ही विक्रिया करते हैं, वो उनमें ऐसी शक्ति हो जाती है। वो अलग है। अब ऐसे रिद्धि की बात क्या है, वायु का एक भी जो विक्रिया करते हैं और उनकी विक्रिया तो पांच राजू एरिया तक पाई जाती है त्रस नाली की। अभी उसमें बहुत सारे विस्तार है, अभी हम देख रहे थे ना, यहाँ देखो अभी अपना जो अभी हमने क्या देखा, मिथ्या दृष्टि के पर्याप्तों के देख लिए। अभी यहाँ 429 पेज पर नया जो होने वाला है ना पैराग्राफ, वहां से देखेंगे। देखो पर्याप्त के जो अभी हमने पढ़े वही नंबर 4 के टेबल में हमने देख लिया। अभी हमको देखना है उन्हें मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त जीवों के ओघ आलाप कहने पर। ओघ आलाप इन्हें सभी को इंक्लूड कर रहे हैं अभी हम। अभी क्राइटेरिया क्या है, अपर्याप्त गुणस्थान तो वही मिथ्यात्व वाला होगा। अभी उसके आगे हमको क्या सोचना है, जीव समास। तो जीव समास कौन से हो गए, हमने 14 में से देखे थे, अपर्याप्तों के साथ हो जाएंगे। देखो एक मिथ्यात्व गुणस्थान, अपर्याप्त संबंधी सात जीव समास। अब हमको पर्याप्तियां कितनी होगी, तो सारों के अपर्याप्तियां अपर्याप्तियां गिनने, तो 6 होती, 5 होगी या 4 होगी। तो संगी के 6 अपर्याप्तियां, असंगी और विकलत्रयों के 5 अपर्याप्तियां, एकेंद्रियों के 4 अपर्याप्तियां। अब प्राण गिनना है, अब डायरेक्ट अपर्याप्तों के प्राण गिनना है। तो संगी अपर्याप्तों के 5 इंद्रिय प्राण, क्योंकि उसका क्षोभशम है ना उतना, तो उसको 5 इंद्रिय प्राण कहेंगे हम। परंतु अपर्याप्त है तो क्या नहीं होगा, मन बल नहीं होगा, वचन बल नहीं होगा, श्वासोच्छ्वास नहीं होगा, तो 10 में से 3 कम हो गए। तो हम संगी के 7 प्राण, समझ में आई बात,
मन वचन नहीं होंगे,
मनोबल वचन बल अपर्याप्तों के नहीं होते। पर्याप्ति पूरी नहीं हुई ना, भाषा पर्याप्ति के बिना उसका कार्य नहीं होगा, मन पर्याप्ति के बिना उसका कार्य नहीं होगा। असंगी के भी 7, क्योंकि उसमें तो मन तो पहले निकाल दिया था, बाद में वचन बल और श्वासोच्छ्वास भी निकाल देना। चतुर इंद्रियों के 6 प्राण मिला आपको 429 पेज पर चल जाएगा। और आपको टेबल देखना है ना, तो नंबर 5 का देखो, उसी पेज पर, और उसका डिस्क्रिप्शन हम ऊपर पढ़ रहे हैं। चतुर इंद्रियों के 6 प्राण, 3 इंद्रियों के 5 प्राण, द्वि इंद्रियों के 4 प्राण, या अपर्याप्तों के गिन रहे हैं, एक इंद्रियों के 3 प्राण, इनमें भी 4 संज्ञाएं होगी। क्योंकि हमको लगता है वो एक इंद्रियों के क्या होगा, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये तो भाव की बात है, समझ रहे ना, हम तो किसी क्रिया में उसको जोड़ना चाहते हैं, यहाँ तो जीव के परिणामों की बात चल रही है। आहार संज्ञा दें, वो तो कुछ क्या खाता होगा, हम तो लड्डू वगैरह खाते हैं, वो क्या खाता होगा ऐसा लगता है, वो बात नहीं है। पर चारों गतियां, एक इंद्रिय जाति आदि 5 जातियां, पृथ्वी काय आदि 6 काय, क्योंकि हमको केवल अपर्याप्त तो देखना है ना उसमें। अभी देखो योग कैसे, हमको योग को कैसे सोचेंगे, मिथ्या दृष्टि है अपर्याप्त है।
आप
हाँ विश्व वाले बोलो,
औदारिक
मिश्र, वैकृत मिश्र और कारण, 3 ही हो गए, क्योंकि बाकी तो पर्याप्त होंगे। मनोयोग नहीं हो सकता यहाँ, वचन योग नहीं हो सकता, औदारिक वैकृत नहीं हो सकता, आहारक तो दोनों ही नहीं हो गए, तो अपर्याप्त होंगे 3 ही बचे, तो 3 योग हो गए। तीनों वेद भी पाए जाते यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है ना पहले औदारिक मिश्र, वैकृत मिश्र, कारमन, 3 योग, तीनों वेद, चारों कषाय, यानी कोई एक इंद्रिय हो या अपर्याप्त, ये चारों कषाय है कि नहीं वहां पर। तो हमको लगता है ये तो वनस्पति देख देख कर हम खुश हो रहे हैं, और वो कषायों में और लेशाओं में वो तो पीड़ित है अपने से। विभंगावधि ज्ञान के बिना 2 अज्ञान, यानी ज्ञान में तो कुमति कुशुद्ध 2 ही लेना, क्यों, अपर्याप्त जीवों के विभंग ज्ञान नहीं होता, भले वो देव और नारकी क्यों ना। देव और नारकियों में नियम क्या है, मिथ्या दृष्टि हो या सम्य दृष्टि, अवधि ज्ञान होता ही होता है, पर वो कब होता है, पर्याप्त होने पर शुरू होता है। तो इसलिए पर्याप्ति पूरी नहीं है तब तक विभंग ज्ञान उनका चालू नहीं होता है, नहीं को अवधि ज्ञान शुरू नहीं होता, पर्याप्त होने पर होता है। पर अवधि ज्ञान होता है जो यहाँ से साथ में ले जाएगा, यहाँ के अवधि ज्ञानी यदि उनका अवधि ज्ञान फॉलो करता है उसमें भी भेद होते हैं, तो वहां पर भी अपर्याप्त अवस्था में होगा। पर यहाँ अवधि ज्ञान नहीं है और देव में सम्यक होकर लेकर गया है देव में, तो पर्याप्त होकर उनके अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा, ये भी नियम है।
उसके भी अपर्याप्त नहीं होगा,
नहीं होगा हाँ। परंतु जिसके ओरिजिन है ही पहले से उसका तो होगा, जैसे हमारे तीर्थंकर अवधि ज्ञान सहित जन्मते हैं तो उनके तो गर्भ में आते समय से उनके तो अवधि ज्ञान है ही वहाँ पर। देखो ये पर्याप्तियाँ एक बार चालू हो गई, पर्याप्तियाँ ने वो तो शक्तियाँ, शक्तियाँ पूर्णता की ओर रही है, यानी डेवलपमेंट चल रही है,
ठीक अंतर है।
तो डेवलपमेंट सभी की चालू हो गई है, शुरुआत तो हो गई, जैसे सभी आप देखते हैं ना वो तो खेलों में सभी खिलाड़ी एक साथ दौड़ना चालू हो जाते हैं, ऐसे सभी पर्याप्तियों की चालू हो गई तो उसके एक एक की पूर्णता एक एक के बाद होती है। तो ये जो अपर्याप्त जीव है वो इतनी छोटी आयु लेकर आए हैं, तो भले वो पर्याप्तियां डेवलपमेंट चालू हो गए उसके पहले वो मर जाएंगे, किसी की भी पूर्णता होने वाली नहीं है। और दूसरे जिसको हम देव और नारकियों में कहते हैं यानी वो निवृत्ति अपर्याप्त, कि एक पूरी हुई फिर दूसरी हुई फिर तीसरी चौथी पांचवी, उनके छह तो पूर्ण होने वाली है, जब तक दूसरी पूर्ण नहीं होती पर्याप्ति तब तक उनको भी अपर्याप्त कह देते हैं। तो उनका अभी काल दूसरे तक आया, अभी आगे के उनके डेवलपमेंट चल रही है, तो डेवलपमेंट तो उनकी अपने शक्ति की अपनी अपनी चलती है और उसमें अन्य अन्य कर्मों का निमित्त भी पाया जाता है। होते हैं जिसको हम सम्मूर्छन मनुष्य कहते हैं, मनुष्यों में भी लब्धि अपर्याप्त जिसको कहेंगे, लब्धि अपर्याप्त हो और निवृत्ति अपर्याप्त है, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक हम, आप जब माँ के पेट में आए तो पहले एक छोटे अंतर्मुहूर्त में दूसरी पर्याप्ति नहीं पूरी हुई तब तक हम क्या थे, निवृत्ति अपर्याप्त, फिर हमारी छह पर्याप्ति पूरी हुई, फिर हम अभी इतने बढ़ गए। पर लब्धि अपर्याप्त जो है वो जैसे कुछ परमाणुओं का ढेर सा हो जाता है ना, उसमें कुछ हाथ पैर नाक कान ऐसा तो कुछ नहीं होगी, इतना छोटा काल है वो हाँ। तो पर भी वो तो कौन सा मनुष्य गति का जीव है, संगी पंचेंद्रिय है हाँ, पर्याप्त जीव होते हैं, यानी वो पर्याप्त तो हम आप है पेट में आए हुए वो पर्याप्त है, और वो सारे लब्धि अपर्याप्त है, पर एक मनुष्य भव है वो हाँ, ये नहीं के बराबर है ना, वो तो नहीं के बराबर, हम आप अपना स्वरूप नहीं पहचाना तो नहीं के बराबर, इसके इतने अनंत बार हो चुके ना मनुष्य, अब भी हुए उसमें क्या विशेषता है, अरे कभी राजा महाराजा भी हुए, अभी तो कुछ नहीं है, अभी के संयोग तो कुछ नहीं उसके सामने,
एक ही राजा।
हमें तो अपना वैभव पहचानना है, ये बाह्य वैभव से विभूति से हमारा कुछ नहीं लेना देना। देखो ये हो गए ना यहाँ तक, अभी हम अपर्याप्तों के बाद देख रहे थे वेद गशाय विभंग ज्ञान हो गई बात हाँ, असंयमी है सारे चक्षु और अचक्षु दो दर्शन है, अभी द्रव्य की अपेक्षा कापोत और शुक्ल इच्छा, देखो ये बात महत्व की है, हमने कल ही देखा था इसको, ये अपर्याप्त जीव है, अपर्याप्त ने अभी कहीं यहाँ से मर गया जी, विग्रह गति में आया है, तो विग्रह गति में कौन सा शरीर है उसको, कार्मण और तेजस, उसके साथ उसका विसरसोपचय होता है, विसरसोपचय समझते हैं नहीं, एक एक कर्म परमाणु, देखो कर्म परमाणु कितने वहां तो अनंत है, और एक एक कर्म परमाणु के साथ जीव राशि से भी अनंत गुणा ऐसे अन्य पुद्गल परमाणु वो स्निग्ध वृक्ष के कारण चिपके हुए है, वो जीव का उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो विसरसोपचय नाम का वो पुंज उसके साथ वो पूरा एक स्कंद बना है, तो कार्मण शरीर का अपना विसरसोपचय और तेजस शरीर का अपना विसरसोपचय, यानी वो कार्मण शरीर में जितने अनंत अनंत परमाणु है उससे भी अनंत अनंत गुणे विसरसोपचय वहां पर है, और सबका मिलकर वो स्कंद हुआ है, और वो पूरा स्कंद एक जीव कार्मण और उसका विसरसोपचय, तेजस और उसका विसरसोपचय यहां से गमन करके चला जाता है, दिखता नहीं है, परंतु उसका वर्ण तो केवली भगवान ने तो जाना है, वो तो श्वेत यानी शुक्ल वर्ण का होता है, तब तक भले उसमें कर्मों में और तेजस उसमें तो पांचों रंग के यानी पांचों वर्ण पाए जाते हैं, तो विश्रसोक्षय है वो तो शुक्ल वर्ण का, इसलिए विग्रह गति में उसका शुक्ल वर्ण बताया। अब जहां वहां पहुंच जाता है और शरीर के परमाणु का ग्रहण हो गया, कोई वैकृत मिश्र वाला है, कोई औदारिक मिश्र वाला है, जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक उसको कपोतलेशा होती है, सब सबके अपर्याप्त अवस्था में कपोतलेशा होती है। भाव की नहीं बात, द्रव्य की बात चल रही है, हम वर्ण की बात कर रहे हैं, शरीर के वर्ण की। देखो देखो यह द्रव्य की बात है, मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त में बात चल रही थी ना अभी हमने, लेशा में देखो द्रव्य की अपेक्षा, नीचे से तीसरी लाइन है, देखो डिस्क्रिप्शन जहाँ लिखा है, द्रव्य की अपेक्षा कापोत और शुक्ल लेशा, शुक्ल पहले विग्रह गति में होगी और वहां पहुंचते ही जहाँ शरीर के परमाणु का ग्रहण शुरू हुआ, जब तक पर्याप्ति नहीं पूरी होती उसको कापोत लेशा कहेंगे, शरीर के वर्ण की
भाव। हरवार सिद्धि के देव है उनके भी,
उनके भी, उनके भी वैसे तो देखो देवों की भी जो शरीर का वर्ण जो है ना, तो जहाँ की जो द्रव्यलेशा है वही उनके भावलेशा द्रव्यलेशा सेम होती है। सौधर्म ईशान में उनका शरीर का वर्ण भी पीत कहेंगे और उनके भावलेशा भी पीत है, बीच वाले है वो पद्मलेशा वाले और ऊपर के सारे शुक्ललेशा वाले, शरीर का वर्ण भी शुक्ल और भाव भी शुक्ललेशा वाले, उनके भी जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती उनके कपोतलेशा होगी।
तो फिर दो कैसे गठित होगा, शुक्ल और कपोत?
शुक्ल विग्रह गति में सारे अपर्याप्त है ना, कहाँ कौन से वो हमको नियुक्ति करना, एट ए टाइम शुक्ल कपोत नहीं है। विग्रह गति में कारमान तेजस शरीर है उसका विसर्सोपचय शुक्ल वर्ण का है, इसलिए वहाँ शुक्ल वर्ण कहेंगे। वहाँ पहुँचते ही मिश्र अवस्था है, औदारिक हो या वैकृत हो, कपोतलेशा, ये द्रव्य की अपेक्षा बात है। अब भाव की बात है, छोलेशा होगी, मिथ्या दृष्टि ना अपर्याप्त अवस्था में छोलेशा होती है, तो क्या मिथ्या दृष्टि को अपर्याप्त अवस्था में शुक्ललेशा भी हो सकती है? अपर्याप्त है नहीं होगी, बराबर है। आप क्या कहेंगे? देव को होगी मिथ्या दृष्टि, गर्भवेग तक जन्मता है आपने सुना होगा, और वो यहाँ से भी शुक्ललेशा में मरता है, वहां पर भी शुक्ललेशा में उत्पन्न होता है। देखो मनुष्य मिथ्या दृष्टि है, सीरियंश मिथ्या दृष्टि, अभी पंचेंद्री की बात कर रहे हैं, वो तो नियम से अशुभ लेशा में जन्म लेगा। अभी कोई देव शुक्ललेशा वाला है, ग्रहवेग वाला, वो मरता है शुक्ललेशा में और मरकर नियम से मनुष्य में आता है, तो बिल्कुल कृष्ण नील कपोत तीन में से कुछ भी एक समय में उसके लेशा अशुभ हो जाते हैं। अदरवाइज यहाँ रहते हुए शुक्ल से कृष्ण होने के लिए छह अंतर्मुद लिखते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट जंप मारकर शुक्ल में से अशुभ नहीं हो सकता, शुक्ल में से पद्म, पद्म में से पीत, पीत में से, और वो भी उसके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद पार करते करते आएगा, हर एक में अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त रहेगा। अब ये मिथ्या दृष्टि शुक्ल लेशा वाला देव मरा और मनुष्य हुआ तो एक समय में अशुभ होकर जन्म लेता है, विग्रह गति में अशुभ हो जाती है।
मनुष्य
आएगा तो अब यहाँ मिथ्या दृष्टि मनुष्य द्रव्यलिंगी मुनि वहाँ जा सकते हैं ग्रहवेक में, यहाँ मरते समय शुक्ल ही होगी तभी वहाँ जन्म लेंगे शुक्ल में, तो वहाँ मिथ्या अपर्याप्त अवस्था में उनकी शुक्ल लेशा है। हमें यहाँ सबको इंक्लूड करके बात है, अगर देवों की अलग बात होगी अलग होगी, मनुष्यों की कहेंगे तो अलग होगी, वो आगे चल कर पढ़ेंगे, पूरी पुस्तक में यही है, ऐसे टेबल ही सॉल्व करने हमको, यानी ये पूरा होते होते एकदम अच्छा जानकार हो जाएगा स्पेशलिस्ट। यानी मनुष्य तीरियंशों में तो मिथ्या दृष्टि सारे अशुभ लेशा में ही जन्मते हैं, मिथ्या दृष्टि साधन वाले, नारकी तो अपने अपने अशुभ लेशा है ही है, वो एकेंद्रिय से तो असंगी तक तो सारे अशुभ लेशा वाले है ही है, परंतु देवों में मिथ्या दृष्टि अवस्था में पित पद्म शुक्ल, सौधर्म ईशान के लिए पित, बीच वालों के लिए पद्म, ग्रहवेग तक शुक्ल, मिथ्या दृष्टि को ऊपर मिथ्या दृष्टि नहीं होते, भवनत्रिक में मिथ्या दृष्टि जीव
अपर्याप्त में तीन अशुद्धि
हाँ, देह होते हुए भी अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण नील कपोत लेशा में जन्मते। वो सारे समय दृष्टि होते हैं, उनकी तो शुक्ल लेशा ही होती है, वो तो थ्रू आउट शुक्ल ही होती है उनकी। यह मिथ्यात्व अवस्था में कहां तक जा सकता है, तो ग्रे वेक्टर। ये द्रव्य और भाव की बात बताई ना, यहां भव्य भी है और अभव्य भी है, उनके सम्यक्त्व की अपेक्षा मिथ्यात्व नाम का भेद है। इसमें संगी भी और असंगी भी है, अपर्याप्त है तो आहारक भी है अनाहारक भी। देखो अपर्याप्त में कार्मण्य विग्रह गति भी लेना और वहां मिश्र अवस्था भी लेना, अनाहारक कब हो गए विग्रह गति में, और आहारक कब हो गए मिश्र का योग में, यानी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक, क्योंकि उसको भी अपर्याप्त कहा। यहाँ साकार उपयोगी भी है अनाकार उपयोगी भी, यानी ज्ञान दर्शन का यहाँ पर भी चल रहा है, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग। ये समझ में आया अपर्याप्तों के उघाला। हाँ आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा हम विचार करेंगे। सासादन सम्यक दृष्टि जीवों के उघाला, अभी गुणस्थान कौन सा, अभी आसान है ना, दूसरा। अभी हमको जीव समास नक्की करना है, हमने 14 जीव समास देखे थे, एक इंद्रिय में होगा क्या,
पंचेंद्रिय में होगा।
तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तो होगा, क्योंकि सासादन किसको प्राप्त होता है, जो औपशमिक सम्यक्त्व से गिरकर आता है उसको प्राप्त होगा, तो पर्याप्त में होता है तो नक्की है। और पर्याप्त में होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे होगा आपको बताना है,
जो मर के,
हाँ जो मर के जाए, जो सासादन के साथ मर के जाएगा उसके होगा। तो सासादन के साथ मरकर कौन सी गति में जा सकता है, नरक बिना देव में जा सकता है, तिरिंच में जा सकता है, मनुष्य में जा सकता है। अभी हम सासादन का सामान्य आलाप देख रहे हैं, तो उसमें तो चारों गति कहेंगे, क्योंकि पर्याप्त जीव है, पर्याप्त पर्याप्त सब आ गए। तो नारकी जीव सासादन में जा सकते कि नहीं, स्वयं वहां के नारकी औपशमिक सम्यक्त्व से गिरकर सासादन में जा सकते हैं, पर यहाँ का कोई मनुष्य तिर्यंच सासादन में मरकर नरक में नहीं जाता। जब अपर्याप्त सासादन का आलाप करेंगे तो वहां तीन ही गतियां कहेंगे, ख्याल में आई ना, सासादन अपर्याप्त का आलाप आगे होगा, पर्याप्त हाँ मर कर उस गुणस्थान के साथ अगर जाता है तो ये अपर्याप्त अवस्था में वो गुणस्थान होता, क्योंकि अपर्याप्त जीव उस काल में सम्यक्त्व तो भी प्राप्त करे और मिथ्यात्व में तो हो ही नहीं सकता, वहाँ नया कोई सम्यक्त्व तो प्राप्त नहीं करता। सम्यक्त्व तो प्राप्ति का कार्य देव नारकी में पर्याप्ति होने के बाद एक अंतर्मूर्त के पश्चात हो सकता है। मनुष्यों में कोई मिथ्यात्व के साथ जन्मा है तो 8 वर्ष के बाद वो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। अभी तिर्यंचों में अलग अलग, गर्भज है तो वो तो उनके भी यथायोग्य काल के बाद होता है, और सम्मूर्छन है तो अंतर्मूर्त में कर सकते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं है। तो अपर्याप्तों में तीन ही गतियां कहेंगे, देखो ये 8 नंबर का टेबल देख लो नेक्स्ट पेज पर, सासादन समय दृष्टियों के अपर्याप्त आलाप, गति के नीचे 3 लिखे हैं। यहाँ तो अभी हमारा सामान्य चल रहा है, बाद में हम पर्याप्तों का कहेंगे, बाद में अपर्याप्तों का कहेंगे,
दोनों लेना
है। अभी तो हम दोनों ले रहे हैं, ये केवल मैं मुझको वो गति की बात बतानी थी इसलिए आगे का बता दिया। अब अपने मूल आलाप पर आते हैं, हमको सासादन जीव देखने हैं, तो उसके जीव समास कौन से देखे हमने, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त। अब उनमें पर्याप्ति कौन सी होती है, 6 पर्याप्ति 6 अपर्याप्त प्राण, 10 प्राण और 7 प्राण, क्योंकि अभी हमको केवल वो पंचेंद्रियों में, संगी पंचेंद्रियों में देखना है, अन्य किसी को नहीं देखना है। चारों संज्ञाएं होती है क्योंकि गुणस्थान उनका दूसरा है, चारों गतियों में ये पाए जाते हैं, क्योंकि इन जनरल बात करनी है। पंचेंद्रिय जाति वाले अभी हम पहले एक केंद्रीय द्वितीय तृतीय इसको रूल आउट करो, त्रस काय ही होगा, आहार भी क्या नहीं होगा, वो तो छठे गुण स्थान में होता है, यहाँ उसके बिना 13 योग हो गए, तीनों वेद वाले पाए जाते हैं, चारों कषाय है, यहाँ पर भी कुमति कुशुत और विभंग ज्ञान कहेंगे, तीनों अज्ञान, असंयम है, चक्षु और अचक्षु दो दर्शन है, क्योंकि यहाँ विभंग ज्ञान है तो उसके साथ अवधि दर्शन नहीं लगाना, द्रव्य और भाव रूप 6 लेशाएं होती हैं, क्योंकि हमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को इंक्लूड कर दिया है और इसलिए उनके सभी लेशाएं लिए, क्योंकि तिर्यंचो जो है ना, तिर्यंचो में भी सभी लेशाएं होती है, अलग अलग रंग वाले तो पंछी यानी पंचेंद्रिय संगी भी पाए जाते हैं, केवल वो मनुष्यों की अपेक्षा विचार मत करना। हाँ, भव्य सिद्धि के अभी क्या है, यो भव्य है नक्की हो गया, भले सम्यक तो से छूट कर आए, पर एक बार सम्यक तो प्राप्त किया, उसका अर्थ है वो भव्य है, मिथ्या दृष्टि में हमने भव्य अभव्य दोनों को लिया था। हा? अब सम्यक तो का टाइप कौन सा है, तो सासाधन सम्यक, अब संगी ही है, असंगियों में ये नहीं होता। आहारक अनाहारक, अनाहारक क्यों, क्योंकि विग्रह गति में भी सासाधन गुण स्थान है, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी दोनों उपयोग होते उसमें, सम्यक तो जब शुरू होता है तब उसको साकार उपयोग होता है, पर यहाँ तो वो गिर कर आया है, तो उपयोग ज्ञान उपयोग में से दर्शन उपयोग पलट सकता है। यही बात अभी नीचे जो 6 नंबर है ना, उसमें यही बात लिखी है जो अभी हमने पढ़ी, तो आज तो हम यही रुकेंगे।
जावाही के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकन सदा देत हो गुरु।
अश्विन में
नमो अरियंतानं नमो सिद्धानं नमो आयतानं नमो शरणं नमो दये सप्तस्तावनं।